चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे और उन्होंने सारे भागों हाथियों हिरणों तथा पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह ये सारे पशु प्रेम भाव से उन्मत हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो। महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जब शरद ऋतु आई तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया। महाप्रभु ने रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे उन्हें वृंदावन जाने में सहायता करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं भोर के समय यात्रा आरंभ करूंगा और जंगल के मार्ग में अलक्षित होकर अकेले जाऊंगा। मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लूंगा। यदि कोई मेरे पीछे आना भी चाहे तो उसे आप लोग रोक ले। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ जाए। तुम लोग कृपया प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दो और दुखी मत हो। यदि तुम लोग सुखी होंगे तो मैं वृंदावन को प्रस्थान करते हुए सुखी हूंगा। यह सुनकर रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप किसी पर आश्रित नहीं हैं। अब आपकी जो इच्छा होगी आप वही करेंगे। हे प्रभु, कृपया हमारी एक विनती सुने। आपने पहले ही कहा है कि हमारे सुख से आपको सुख मिलेगा। यह आपका अपना कथन है। यदि आप हमारी केवल एक विनती मान ले तो हम अत्यधिक सुखी होंगे। हमारे प्रभु, आप अपने साथ एक उत्तम ब्राह्मण अवश्य ले लें। वह आपके लिए भिक्षा लाएगा, पकाएगा, आपको प्रसाद देगा और आपकी यात्रा के समय आपका जलपात्र उठाएगा। जब आप जंगल से होकर यात्रा करेंगे तो आपको ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिल सकेगा जिसके यहाँ आप भोजन कर सके। अब आप कृपया आज्ञा दें जिससे आपके साथ कम से कम एक शुद्ध ब्राह्मण जा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपने साथ अपने किसी भी संगी को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं किसी को भी चुनूंगा तो अन्य सभी लोग दुखी होंगे। ऐसा व्यक्ति नया ही होना चाहिए। उसे शांत चित होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सके तो मैं उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार हूं। तब स्वरूप दामोदर ने कहा, यह बलभद्र भट्टाचार्य है। इसे आपके प्रति अत्यधिक अनुराग है। यह सचरित्र विद्वान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है। प्रारंभ में वह बंगाल से आपके साथ आया था। उसकी इच्छा है कि वह समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन करे। इसके अतिरिक्त आप दूसरा ब्राह्मण भी ले जाएं, जो रास्ते में सेवक का काम कर सके और आपकी भोजन व्यवस्था कर सके। यदि आप उसे भी साथ ले सकें तो हम अत्यंत सुखी होंगे। यदि आपके साथ जंगल के मार्ग में दो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कठिनाई या असुविधा नहीं होगी। दूसरा ब्राह्मण आपके वस्त्र तथा जलपात्र लिए रहेगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांग कर आपके लिए भोजन पकाएगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित की बात मान ली और बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। पिछली रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था और उनसे आज्ञा ले ली थी। अब रात्रि समाप्त होने के पूर्व महाप्रभु जगे और तुरंत चल पड़े। उनको किसी ने देखा नहीं। क्योंकि महाप्रभु जा चुके थे अतः जब प्रातः काल भक्तों ने उन्हें नहीं देखा तो वे अत्यंत व्याकुल होकर उनकी खोज करने लगे। जब सारे भक्त महाप्रभु की खोज कर रहे थे तब स्वरूप दामोदर ने उन्हें रोका। तब सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानकर चुप हो गए। महाप्रभु जाने पहचाने सार्वजनिक मार्ग पर न चलकर उपमार्ग से होकर गए। इस तरह उन्होंने कटक शहर को अपनी दाई ओर छोड़ते हुए जंगल में प्रवेश किया। जब महाप्रभु सुनसान जंगल से होकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो बाघों तथा हाथियों ने उन्हें देखकर रास्ता छोड़ दिया। जब महाप्रभु बाबा वेश में जंगल से होकर जा रहे थे तो झुंड के झुंड बाघ हाथी गैंडे तथा सुअर आए। महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर अत्यंत डरा हुआ था किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक और खड़े रहे। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु बाबा वेश में रास्ते पर चले जा रहे थे तो उनका पांव उस बाघ से छू गया। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण नाम का कीर्तन करो। इस पर वह बाघ तुरंत उठ खड़ा हुआ और कृष्ण कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा। अन्य दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे तब मत हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए वहां आया। जब महाप्रभु स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र जप रहे थे तब वे हाथी उनके सामने आए। महाप्रभु ने तुरंत उन हाथियों पर पानी उछाल कर उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु द्वारा उछाला पानी पड़ा वे कृष्ण कृष्ण कहने लगे और प्रेम में नाचने और गाने लगे। कुछ हाथी भूमि पर गिर पड़े और कुछ प्रेमवश चिंघाड़ने लगे। यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य एकदम आश्चर्यचकित हो गया। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते। उनकी मधुर वाणी सुनकर सारी हिरणियां उनके निकट आ जाती। उनका उच्च स्वर सुनकर हिरणियां उनके दाएं बाएं चलती जाती। महाप्रभु उन्हें अत्यंत उत्सुकता से श्लोक सुनाते हुए उनकी पीठ थपथपाते। वे मूर्ख हिरण धन्य हैं क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के पुत्र के समीप आए। निसंदेह हिरण तथा हिरणिया प्रेम की चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो 5-7 भाग आए और वे हिरणों के साथ मिलकर महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। भागों तथा हिरणों को अपने पीछे आते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को सहसा वृंदावन का स्मरण हो आया। अतः वे वृंदावन के दिव्य गुणों का वर्णन करने वाला श्लोक सुनाने लगे। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। वहां न भूख है, न क्रोध, न ही प्यास है। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंसक पशुओं में सहज वैर होता है, किंतु वे वहां दिव्य भाव में मैत्री पूर्वक रहते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बाघ तथा हिरण कृष्ण का नाम लेने लगे और नृत्य करने लगे। जब सारे बाघ तथा हिरण नाचने और कूदने लगे तो बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बाघ तथा हिरण एक दूसरे का आलिंगन करने लगे और एक दूसरे का मुख स्पर्श करके चूमने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कौतुक देखा तो वे मंद हास करने लगे। अंत में उन पशुओं को छोड़कर महाप्रभु अपने रास्ते पर चल दिए। मोर इत्यादि पक्षियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उन्होंने भी कीर्तन करते और नाचते हुए महाप्रभु का पीछा करना शुरू कर दिया। वे सब कृष्ण के पावन नाम से मतवाले हो गए थे। जब महाप्रभु उच्च स्वर से हरि बोल का उच्चारण करते तो सारे वृक्ष तथा लताएं उनकी ध्वनि सुनकर प्रफुल्लित हो जाती। इस तरह झारखंड के वन के सारे चर अचर जीव महाप्रभु द्वारा ध्वनित कृष्ण का पवित्र नाम सुनकर मतवाले हो रहे थे। महाप्रभु जिन जिन गांवों से होकर गए और जिन जिन स्थानों में यात्रा के दौरान रुके, वहां के सारे लोग पवित्र हो गए और उनमें भगवत प्रेम जागृत हो गया। यदि किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से पवित्र नाम का कीर्तन सुना और अन्य किसी ने इस व्यक्ति से यह कीर्तन सुना और पुनः तीसरे व्यक्ति से और किसी ने सुना, तो इस तरह की गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सारे देशों के लोग वैष्णव बन गए। इस प्रकार हर व्यक्ति कृष्ण तथा हरि के नाम का कीर्तन करता, नाचता, रोता और हंसता। महाप्रभु ने हमेशा अपने प्रेम भाव का प्रदर्शन नहीं किया। वे लोगों की भीड़ से भयभीत थे, अतः उन्होंने अपने प्रेम को गुप्त रखा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सहज प्रेम भाव को प्रकट नहीं किया, फिर भी हर व्यक्ति उन्हें देखकर और सुनकर शुद्ध भक्त बन गया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल, पूर्वी बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिणी देशों की यात्रा की और कृष्ण भावना का प्रसार करके सभी प्रकार के लोगों का उद्धार किया। जब मथुरा जाते हुए महाप्रभु झारखंड आए तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग लगभग असभ्य थे और भगवत भावना से विहीन थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन भीलों को भी पवित्र नाम का कीर्तन करने और दिव्य प्रेम पद तक ऊपर उठने का अवसर प्रदान किया। इस तरह उन्होंने उन सब का उद्धार किया। भला महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को समझ पाने की शक्ति किस में है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु जारीखंड जंगल से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने उसे वृंदावन ही समझ लिया। जब वे पहाड़ियों से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें वे गोवर्धन पर्वत समझ बैठे। इसी तरह जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु कोई नदी देखते तो वे उसे तुरंत यमुना नदी मान बैठते। इस तरह जंगल में वे परम प्रेमावेश से पूर्ण हो जाते और नाचते तथा रोते रोते गिर पड़ते थे। मार्ग में बलभद्र भट्टाचार्य सभी तरह के शाक कंद तथा फल जहां कहीं उपलब्ध होते एकत्र कर लेते। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में जाते तो 5-7 ब्राह्मण आकर महाप्रभु को निमंत्रण दे जाते। कुछ लोग अन्न लाकर बलभद्र भट्टाचार्य को दे जाते, अन्य लोग दूध तथा दही ले आते तो कोई घी तथा शक्कर ले आता। कुछ गांवों में ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी अब्राह्मण कुलों में जन्मे भक्त आते और बलभद्र भट्टाचार्य को आमंत्रित कर जाते। बलभद्र भट्टाचार्य जंगल से एकत्र किए गए सभी तरह के साग सब्जी को पकाता और श्री चैतन्य महाप्रभु इन व्यंजनों को परम प्रसन्न होकर ग्रहण करते थे। बलभद्र भट्टाचार्य 2-4 दिन चल सकने के लिए अन्न का संग्रह कर लेते थे। निर्जन स्थान पर वह इस अन्न को पकाते और जंगल से एकत्र किए हुए साग सब्जी तथा फल मूल को खाने के लिए तैयार करते। महाप्रभु इस जंगली साग सब्जी को खाकर परम सुखी होते और इससे भी अधिक सुखी तब होते जब वे किसी निर्जन स्थान में ठहरते। बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु से इतना स्नेह करते कि वह दास की तरह सेवा करता रहता। उसका सहायक ब्राह्मण जलपात्र तथा वस्त्र लिए रहता। महाप्रभु झरने के गर्म जल से 3 बार स्नान करते थे। वे प्रातः और सायंकाल प्रचुर लकड़ियों से उत्पन्न अग्नि से अपने आप को गर्माते थे। इस एकांत जंगल में यात्रा करते हुए और परम दुख का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये वचन कहे, हे भट्टाचार्य, मैंने जंगल से होकर बहुत दूर की यात्रा की है किंतु मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ है। कृष्ण मुझ पर विशेष कृपालु हैं। उन्होंने जंगल से होकर जाने वाले इस पथ पर लाकर मुझ पर कृपा दिखलाई है। इस तरह उन्होंने मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान किया है। इसके पूर्व मैंने वृंदावन जाने और रास्ते में एक बार फिर से अपनी माता गंगा नदी तथा अन्य भक्तों को देखने का निश्चय किया था। मैंने सोचा था कि एक बार फिर सभी भक्तों को देखूंगा और उनसे मिलूंगा तथा उन्हें अपने साथ वृंदावन ले जाऊंगा। इस तरह मैं बंगाल गया और वहां अपनी माता गंगा नदी तथा भक्तों को देखकर अत्यंत सुखी हुआ। किंतु जब मैं वृंदावन को चलने लगा तो हजारों लाखों लोग एकत्रित हो गए और मेरे साथ चलने लगे। इस तरह मैं एक बड़ी भीड़ के साथ वृंदावन जा रहा था, किंतु सनातन के मुख से कृष्ण ने मुझे एक शिक्षा दी। इस तरह कुछ अवरोध डालकर उन्होंने मुझे इस जंगल से होकर जाने वाले वृंदावन के मार्ग पर ला दिया। कृष्ण कृपा के सागर हैं, वे दीन तथा पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। उनकी कृपा के बिना सुख की कोई संभावना नहीं है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य का आलिंगन किया और उससे कहा, तुम्हारी कृपा से ही मैं अब इतना सुखी हूँ। बलभद्र भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप साक्षात कृष्ण हैं, इसीलिए आप इतने दयालु हैं। मैं तो पतित जीव हूँ, किंतु आपने मुझ पर अतीव कृपा की है। हे महोदय, मैं अत्यंत पतित हूँ, फिर भी आप मुझे अपने साथ ले आए। आपने महती कृपा करके मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन स्वीकार किया है। यद्यपि मैं अधम कोवे से अधिक अच्छा नहीं हूँ, किंतु आपने मुझे अपना वाहन गरुड़ बनाया है। आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, आदि भगवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद विग्रह दिव्य आनंद ज्ञान तथा शाश्वता के मूर्तिमान रूप हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। ऐसी है भगवान की कृपा। इस तरह बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु की स्तुति की। उन्होंने प्रेममयी सेवा करके महाप्रभु के मन को तुष्ट किया। अंत में महाप्रभु प्रसन्न मन से काशी नामक तीर्थ स्थान में आ पहुंचे। वहां उन्होंने मणिकर्णिका नामक घाट में स्नान किया। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे। वे महाप्रभु को वहां देखकर विस्मित हुए। तब तपन मिश्र सोचने लगे, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। यह सोचकर तपन मिश्र मन ही मन अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और रुदन करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। तब तपन मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु को विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने ले गए। वहां से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया। तपन मिश्र खुशी खुशी श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले आए और उनकी सेवा करने लगे। वे अपने वस्त्र लहराकर नृत्य करने लगे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धोया और बाद में उस चरणोदक को उन्होंने स्वयं तथा पूरे परिवार ने पिया। उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य की भी पूजा की और सम्मान किया। तपन मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन बनाने का काम सौंप दिया। भोजन के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने लगे, तब तपन मिश्र के पुत्र रघु ने उनके पांव दबाए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन को तपन मिश्र के सारे परिवार ने ग्रहण किया। जब महाप्रभु के आने का समाचार फैल गया तो चंद्रशेखर भी उन्हें मिलने आए। चंद्रशेखर तपन मिश्र के मित्र थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दास के रूप में उन्हें बहुत पहले से जानते थे। वे जाति के वैद्य थे किंतु मुनीम का पेशा करते थे। उस समय वे वाराणसी में रह रहे थे। चंद्रशेखर वहां आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरकर रोने लगे। महाप्रभु ने खड़े होकर अपनी अहेतुकी कृपा वश उनका आलिंगन किया। चंद्रशेखर ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि मैं आपका पुराना सेवक हूँ। निसंदेह आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं अपने विगत कर्मों के कारण वाराणसी में रह रहा हूँ, किंतु यहाँ पर मैं माया तथा ब्रह्म शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता। चंद्रशेखर ने आगे कहा, वाराणसी में 6 दर्शनों की व्याख्या के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं होती। इतने पर भी तपन मिश्र मुझ पर बहुत कृपालु हैं, क्योंकि वे कृष्ण संबंधी कथाएं सुनाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। यद्यपि आप सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तथापि आपने हमें अपना दर्शन दिया है। हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप वृंदावन जा रहे हैं। कृपया वाराणसी में कुछ दिन रहकर आप हमारा उद्धार कर दें, क्योंकि हम दोनों आपके सेवक हैं। तब तपन मिश्र ने कहा, हे प्रभु, आप जब तक वाराणसी में रहें, आप कृपया मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का निमंत्रण स्वीकार न करें। अपने इन दो सेवकों की प्रार्थनाओं से वश होकर महाप्रभु वाराणसी में 10 दिनों तक रहे, यद्यपि उनकी कोई ऐसी योजना नहीं थी। वाराणसी में महाराष्ट्र का रहने वाला एक ब्राह्मण था, जो नित्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आता था। वह ब्राह्मण महाप्रभु के सौंदर्य तथा कृष्ण प्रेम को देखकर अतीव चकित था। जब वाराणसी के ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन पर निमंत्रित करते तो वे उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। वे यह उत्तर देते, मैं पहले से अन्यत्र निमंत्रित हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन लोगों के निमंत्रण अस्वीकार करते रहते थे, क्योंकि वे मायावादी सन्यासियों की संगति से डरते थे। वहां प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक महान मायावादी सन्यासी थे, जो अपने अनुयायियों की एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। एक ब्राह्मण जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा था, वह प्रकाशानंद सरस्वती के पास आया और उसने महाप्रभु के गुणों का बखान किया। उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है, जिसके अद्भुत प्रभाव तथा यश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। उस सन्यासी की हर वस्तु निराली है, उसका शरीर सुगठित तथा अत्यलम कृत है, और उसका रंग विशुद्ध सोने के समान है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। उसके शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण हैं। जो भी उसके ये लक्षण देखता है, वह उसे साक्षात नारायण मानने लगता है। जो भी उसे देखता है, वह तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगता है। हमने श्रीमद् भागवत में महाभागवत के जो जो लक्षण सुने हैं, वे सभी लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। उसकी जीभ निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती है और उसकी आंखों से आंसू गंगा की धारा की तरह निरंतर बहते रहते हैं। कभी वह नाचता है, हंसता है, गाता है, रोता है और कभी सिंह की तरह गर्जना करता है। उसका नाम कृष्ण चैतन्य है जो सारे जगत के लिए शुभ है। उसका सब कुछ नाम रूप तथा गुण सभी अद्वितीय हैं। उसे देखने से ही जान पड़ता है कि उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। ऐसे गुण निश्चित रूप से असामान्य हैं। भला इन पर कौन विश्वास करेगा। यह विवरण सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती खूब हंसे। उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए वे इस तरह बोले। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, हाँ मैंने भी उसके विषय में सुना है। वह बंगाल से आया हुआ सन्यासी है और अत्यंत भावुक है। मैंने यह भी सुना है कि वह भारतीय संप्रदाय का है, क्योंकि वह केशव भारती का शिष्य है, किंतु वह केवल ढोंगी है। प्रकाशानंद सरस्वती ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि उसका नाम चैतन्य है और उसके साथ अनेक भावुक लोग रहते हैं। उसके अनुयायी उसके साथ नाचते हैं और एक देश से दूसरे देश तथा एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते हैं। जो भी उसे देखता है वह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है। क्योंकि वह अपनी योग शक्ति से लोगों को सम्मोहित करता है, अतः जो भी उसे देखता है वह मोहित हो जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु मैंने सुना है कि वे भी इस चैतन्य की संगति से पागल हो गए हैं। यह चैतन्य केवल नाम का सन्यासी है, वास्तव में यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी हो, काशी में उसकी भावुकता की मांग अधिक नहीं होगी। तुम चैतन्य को मिलने मत जाना, तुम वेदांत सुनते रहो। यदि तुम ऐसे उच्छंखल लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। जब उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस तरह कहते सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ। वह कृष्ण कृष्ण कहता हुआ वहां से तुरंत चला गया। उस ब्राह्मण का चित्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के कारण पहले से शुद्ध हो चुका था। अतः वह श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो कुछ हुआ था उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए। तब वह ब्राह्मण महाप्रभु से पुनः बोला। उस ब्राह्मण ने कहा, जो ही मैंने उसके सामने आपके नाम का उच्चारण किया त्यों ही उसने इस बात की पुष्टि की कि वह आपके नाम को जानता है। आपके दोषों को गिनाते हुए उसने तीन बार चैतन्य 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 उच्चारण करके आपके नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसने आपका नाम तीन बार लिया किंतु कृष्ण का नाम एक बार भी नहीं लिया। क्योंकि उसने तिरस्कार करके आपका नाम लिया, अब ऐव मुझे बहुत दुख हुआ। आखिर प्रकाशानंद ने कृष्ण तथा हरि के नाम क्यों नहीं लिए। उसने चैतन्य नाम का तीन बार उच्चारण किया। मैं तो आपको देखकर ही कृष्ण तथा हरि नामों का उच्चारण करने के लिए
प्रेरित हो जाता हूं।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया,
मायावादी निर्विशेषवादी लोग भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं, इसीलिए वे मात्र ब्रह्म आत्मा तथा चैतन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुखों पर नहीं आता, क्योंकि वे भगवान कृष्ण जो अपने नाम से अभिन्न हैं, उनके प्रति अपराधी हैं।
भगवान का पवित्र नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप, ये तीनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये सभी परम पूर्ण हैं, अतः ये चिदानंद स्वरूप अर्थात दिव्य रूप से आनंदमय है। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में या उनके नाम तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु जहां तक भद्र जीव का सवाल है, उसका नाम उसके शरीर से, उसके मूल स्वरूप आदि से भिन्न होता है। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आधार स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है, यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर तथा उनकी लीलाएं इन कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम, उनके दिव्य गुण तथा उनकी दिव्य लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण के समान हैं। वे सभी आध्यात्मिक तथा आनंदमय हैं, इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीवों में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के शेष बचे भोजन का आस्वादन करता है, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण की लीलाओं के रस आनंद से पूर्ण है, वे ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर उसे जीत लेते हैं। मैं अपने गुरु व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सारी अशुभ वस्तुओं को परास्त करते हैं। यद्यपि वे प्रारंभ में ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में निमग्न थे और अन्य समस्त प्रकार की चेतना का परित्याग करके एकांतवास कर रहे थे, किंतु वे श्री कृष्ण की अत्यंत रागमय लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गए। अतएव उन्होंने कृपा पूर्वक श्रीमद् भागवत नामक सर्वोच्च पुराण का प्रवचन किया, जो परम सत्य का उज्जवल प्रकाश है और जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है। श्री कृष्ण के दिव्य गुण पूर्णतया आनंदमय तथा आस्वाद्य हैं। फलस्वरूप भगवान कृष्ण के गुण
आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के मन को भी आत्म साक्षात्कार के आनंद से आकर्षित कर लेते हैं। जो आत्मा राम अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं और बाहरी भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट नहीं होते, वे भी श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। जिनके गुण दिव्य हैं और कार्यकलाप अद्भुत हैं, भगवान हरि कृष्ण कहलाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त जब उनके चरण कमलों पर तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तब उसकी सुगंध से आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों आत्मा राम के भी मन आकृष्ट हो जाते हैं। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु ने उन मुनियों कुमारों की नासिकाओं से होकर हृदय में प्रवेश किया, तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहते हुए भी उन्होंने अपने तन तथा मन में परिवर्तन का अनुभव किया। क्योंकि मायावादी महान अपराधी तथा नास्तिक हैं, इसलिए कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुखों से नहीं निकलता। मैं इस काशी नगरी में अपने प्रेम भावों को बेचने आया हूँ, किंतु मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा है। यदि वे नहीं बिक सकते तो उन्हें मैं घर वापस लेता जाऊंगा। मैं इस शहर में बेचने के लिए भारी बोझ लेकर आया हूँ, इसे फिर वापस ले जाना कठिन कार्य है। अतः यदि मुझे असली मूल्य का कुछ अंश भी मिल सका तो मैं इस काशी नगरी में इसे बेच दूंगा। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले दिन वे जल्दी उठकर मथुरा के लिए चल पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा के लिए चल पड़े तो तीनों भक्त उनके साथ चलने लगे, किंतु महाप्रभु ने दूर से ही उन्हें साथ चलने से मना किया और उन्हें घर लौट जाने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु के विरह में तीनों जन एकत्र होकर उनके पवित्र गुणों का महिमा गान करते और इस तरह प्रेम भाव में निमग्न रहते। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए, जहां उन्होंने गंगा और यमुना नदी के संगम में स्नान किया। फिर वे वेणी माधव के मंदिर गए और वहां प्रेमा वेश में उन्होंने कीर्तन और नृत्य किया। ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी देखी, वे उसमें कूद पड़े। बलभद्र भट्टाचार्य ने शीघ्र ही उन्हें पकड़ लिया और सावधानी से ऊपर खींच लिया। महाप्रभु प्रयाग में 3 दिन रहे। उन्होंने कृष्ण का पवित्र नाम तथा प्रेम प्रदान किया। इस तरह उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। मथुरा जाते हुए जहां भी महाप्रभु रुकते, वे कृष्ण नाम तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करते। इस तरह वे लोगों को नचाते। जब उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया था, तब उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया था, और जब वे पश्चिमी प्रदेश में गए, तब उन्होंने उसी तरह से अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। मथुरा जाते हुए महाप्रभु को कई बार यमुना नदी मिली और वे यमुना नदी को देखते ही उसमें तुरंत कूद पड़ते तथा जल के भीतर कृष्ण प्रेम में अचेत हो जाते। जब मथुरा के निकट पहुंचकर उन्होंने शहर देखा, तो उन्होंने भूमि पर गिरकर अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर दंडवत प्रणाम किया। मथुरा नगरी में प्रवेश करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम घाट में स्नान किया। फिर वे कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने गए और उन्होंने केशव जी का दर्शन किया। महाप्रभु ने उन्हें सादर नमस्कार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने गाने तथा जोर जोर से हुंकार भरने लगे तो सारे लोग उनके प्रेमावेश को देखकर चकित रह गए। एक ब्राह्मण आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और फिर प्रेमाविष्ट होकर उनके साथ साथ नृत्य करने लगा। वे दोनों भावाविष्ट होकर नाचने तथा एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। वे हाथ उठाकर कहने लगे, हरि तथा कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। तब सारे लोग हरि हरि उच्चारण करने लगे और वहां बहुत कोलाहल होने लगा। भगवान केशव की सेवा में लगे पुजारी ने महाप्रभु को लाकर एक माला भेंट की। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते और कीर्तन करते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और सब ने कहा, ऐसा दिव्य प्रेम होना कोई सामान्य बात नहीं है। लोगों ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मतवाला हो रहा है। हर कोई हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है और कृष्ण का पवित्र नाम ले रहा है। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह से भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अब वे हर एक का उद्धार करने मथुरा आए हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को एक और ले गए, फिर एकांत स्थान में बैठकर उससे पूछने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, निष्ठावान हैं तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं। आपको भावमय कृष्ण प्रेम का यह दिव्य वैभव कहां से मिला? उस ब्राह्मण ने कहा, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अपने भ्रमण के समय मथुरा नगरी में आए थे। मथुरा में रहते हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मेरे घर पधारे थे और उन्होंने मुझे शिष्य बनाया था। उन्होंने मेरे घर में भोजन भी किया था। गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना करने के बाद श्रीला माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा की। आज भी गोवर्धन पर्वत पर उसी अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है। ज्यों ही महाप्रभु ने उस ब्राह्मण के साथ माधवेंद्रपुरी के संबंध के बारे में सुना, त्यों ही उन्होंने उस ब्राह्मण के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदित किया। वह ब्राह्मण भी डर कर तुरंत ही महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मेरे गुरु पद पर आसीन हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मुझे नमस्कार करें। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया। तब उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं। आपके उत्कट प्रेम को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका माधवेंद्रपुरी के साथ कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। इस तरह का उत्कट प्रेम तभी अनुभव किया जा सकता है जब किसी का माधवेंद्रपुरी से संबंध हो। उसके बिना ऐसे दिव्य उत्कट प्रेम की सुगंध भी संभव नहीं है। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। तब वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गया और अपनी इच्छा से महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा करने लगा। उसने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा कि महाप्रभु के लिए भोजन पकाए। उस समय महाप्रभु ने हंसते हुए ये वचन कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माधवेंद्रपुरी आपके स्थान पर पहले ही भोजन कर चुके हैं, अतः आप भोजन बनाकर मुझे दे सकते हैं, यह मेरा आदेश है। महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसका अनुसरण करते हैं और वह अपने आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है सारा जगत उसका अनुगमन करता है। वह ब्राह्मण सनोड़िया जाति का ब्राह्मण था और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करते। यद्यपि वह ब्राह्मण सनोड़िया जाति का था किंतु श्रील माधवेंद्रपुरी ने देखा कि उसका आचरण वैष्णव जैसा है, इसलिए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। माधवेंद्रपुरी ने उसका पकाया भोजन भी ग्रहण किया था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वेच्छा से उस ब्राह्मण से भोजन मांगा और वह ब्राह्मण स्वाभाविक दैन्य का अनुभव करते हुए इस प्रकार बोला, आपको भोजन देने में मेरा महान सौभाग्य है। आप परम भगवान हैं और दिव्य पद पर होने के कारण आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। मूर्ख लोग आपकी निंदा करेंगे किंतु मैं ऐसे दुष्ट लोगों के वचन सहन नहीं कर सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, वेद पुराण तथा ऋषि गण सदैव आपस में सहमत नहीं होते, फलतः धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। माधवेंद्रपुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे धर्मों का सार है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। जिस महाप्रभु का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांतों को समझा जाता है। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। फल स्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। इस वार्ता के बाद ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराया। फिर मथुरा के सारे निवासी महाप्रभु का दर्शन करने आए। लोग लाखों की संख्या में आए जिनकी गणना कोई नहीं कर सकता था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु लोगों को दर्शन देने के लिए घर से बाहर आए। जब लोग एकत्र हो गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ उठाकर जोर से कहा, हरि बोल। लोगों ने महाप्रभु के साथ नामोच्चारण किया और प्रेमाविष्ट हो गए। वे उन्मत्त की तरह नाचने तथा हरि की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के किनारे के 24 घाटों में स्नान किया और उस ब्राह्मण ने उन्हें सारे तीर्थ स्थान दिखलाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी के तट पर स्थित सारे तीर्थ स्थानों को देखा, जिनमें स्वयंभू, विश्राम घाट, दीर्घ विष्णु, भूतेश्वर, महाविद्या तथा गोकर्ण सम्मिलित हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के विविध वनों को देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को अपने साथ ले लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न वन देखे, जिनमें मधुवन, तालवन, कुमुदवन तथा बहुला वन सम्मिलित हैं। वे जहां जहां गए उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक स्नान किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से होकर जा रहे थे तब चरती हुई गोवों के झुंड ने उन्हें जाते हुए देखा। वे तुरंत उन्हें घेर कर उच्च स्वर से रंभाने लगी। झुंड को पास आते देखकर महाप्रभु प्रेमवश स्तब्ध रह गए। तब गोवें बड़े ही वात्सल्य से उनके शरीर को चाटने लगी। स्वस्थ चित्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोवों को सहलाने लगे और गोवें भी उनका साथ न छोड़ पाने के कारण उन्हीं के साथ साथ चलने लगी। ग्वाले बड़ी कठिनाई से अपनी गोवें संभाल पाए। फिर जब महाप्रभु ने कीर्तन किया तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर सारे हिरण उनके पास आ गए। जब हिरणों तथा हिरणियों ने आकर महाप्रभु का मुख देखा तो वे उनका शरीर चाटने लगे। उनसे तनिक भी भयभीत हुए बिना वे उनके साथ साथ रास्ते में चलने लगे। भौरे तथा तोता और कोयल जैसे पक्षी पंचम स्वर में गाने लगे तथा मोर महाप्रभु के आगे नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर वृंदावन के वृक्ष तथा लताएं सब प्रफुल्लित हो उठे। उनकी टहनियां खड़ी हो गई और वे मधु के रूप में प्रेम के आंसू बहाने लगे। फूल फल से लदे वृक्ष तथा लताएं महाप्रभु के चरणों पर गिरकर नाना प्रकार की भेंटों से उनका स्वागत करने लगी, मानो उनके मित्र हों। इस तरह वृंदावन के सारे चर तथा अचर प्राणी महाप्रभु को देखकर परम हर्षित हुए। ऐसा लग रहा था मानो मित्र गण अपने अन्य मित्र को देखकर प्रसन्न हुए हों। उनके स्नेह को देखकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए। वे उनसे उसी तरह खेलने लगे जिस तरह मित्र एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इस तरह वे स्वेच्छा से अपने मित्रों के वशीभूत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर वृक्ष तथा हर लता को आलिंगन करने लगे और वे बदले में उन्हें अपने फल फूल समर्पित करने लगे, मानो वे समाधि में हो। महाप्रभु का शरीर चंचल था और उसमें अश्रु, कंपन तथा हर्ष प्रकट हो रहे थे। वे जोर जोर से कृष्ण बोल कह रहे थे। तब सारे चर तथा अचर प्राणी हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे, मानो वे चैतन्य महाप्रभु के गहन स्वर की प्रतिध्वनि कर रहे हों। फिर महाप्रभु मृगों को गले लगाकर रोने लगे। उन मृगों के शरीरों से हर्ष प्रकट हो रहा था और नेत्रों में आंसू थे। जब नर तथा मादा तोता वृक्ष की डाल पर दिखे तो महाप्रभु उन्हें देखकर उनको बोलते हुए सुनना चाहते थे। नर तथा मादा दोनों तोते उड़कर महाप्रभु के हाथ पर बैठ गए और कृष्ण के दिव्य गुणों का गान करने लगे, जिसे महाप्रभु सुनते रहे। नर तोता गाने लगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर एक के लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन की गोपियों को मात देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनकी लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली हैं तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को गेंद जैसा छोटा खिलौना बना देता है। उनके निर्मल गुण अनंत हैं और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं। ओह, हमारे प्रभु सारे ब्रह्मांड का पालन करें। नर तोते से भगवान कृष्ण का वर्णन सुनकर मादा तोता श्रीमती राधा रानी का वर्णन करने लगी। मादा तोते ने कहा, श्रीमती राधा रानी का स्नेह, उनका अनुपम सौंदर्य तथा उत्तम आचरण, उनका कलापूर्ण नृत्य तथा गायन और उनकी कविता सबके सब इतने आकर्षक हैं कि वे उन कृष्ण के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं जो ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाले हैं। तत्पश्चात नर तोते ने कहा, कृष्ण तो कामदेव के भी मन को मोहने वाले हैं। फिर वह दूसरा श्लोक सुनाने लगा। तब तोते ने कहा, हे प्रिय शारी मादा तोता, श्री कृष्ण वंशी धारण करने वाले हैं और ब्रह्मांड भर की सारी स्त्रियों के हृदयों को हरने वाले हैं। वे सुंदर गोपिकाओं के विशेष रूप से भोक्ता हैं और कामदेव को भी मोहने वाले हैं। आओ उनका यशोगान करें। तब मादा तोते ने नर तोते से परिहास करते हुए बोलना प्रारंभ किया और श्री चैतन्य महाप्रभु उसे इस तरह बोलते सुनकर अद्भुत प्रेम से चकित रह गए। मादा तोता शारी ने कहा, जब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होते हैं तब वे कामदेव को भी मोहने वाले मदन मोहन होते हैं, अन्यथा जब वे अकेले होते हैं तब वे समस्त ब्रह्मांड को मोहने वाले होते हुए भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। तब नर तथा मादा तोते उड़कर वृक्ष की ढाल पर चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकता पूर्वक मोरों का नृत्य देखने लगे। जब महाप्रभु ने मोरों की नीली गर्दन देखी तो तुरंत उनमें कृष्ण की स्मृति जाग उठी और वे प्रेमाविष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। जब ब्राह्मण ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए हैं तो उसने तथा बलभद्र भट्टाचार्य ने उनकी देख रेख की। उन्होंने तुरंत महाप्रभु के शरीर पर पानी छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु का बाहरी वस्त्र ले लिया और उससे पंखा जलने लगे। फिर वे महाप्रभु के कान में कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। जब महाप्रभु को चेतना आई तो वे भूमि पर लौटने लगे। जब महाप्रभु भूमि पर लौट रहे थे तब तीक्ष्ण कांटों से उनका शरीर घायल हो गया। बलभद्र भट्टाचार्य ने गोद में उठाकर उन्हें शांत किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन कृष्ण के प्रेम में भ्रमण कर रहा था। वे तुरंत उठे और बोले, कीर्तन करो कीर्तन करो। फिर वे स्वयं नाचने लगे। महाप्रभु का आदेश पाने पर बलभद्र भट्टाचार्य तथा ब्राह्मण दोनों कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे। तब महाप्रभु नाचते नाचते मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वह ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमावेश के भावों को देखकर विस्मित था। फिर वह महाप्रभु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिंतित हो उठा। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जगन्नाथपुरी में प्रेमावेश में मग्न था, किंतु जब वे वृंदावन के मार्ग से होकर निकल रहे थे तब वह प्रेम सैकड़ों गुना बढ़ गया। जब महाप्रभु ने मथुरा देखा तो उनका प्रेम हजार गुना बढ़ गया, किंतु जब वे वृंदावन के जंगलों में घूम रहे थे तब वह लाख गुना बढ़ गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यत्र थे तब वृंदावन का नाम सुनकर ही उनका प्रेम बढ़ जाता था। अब जबकि वे वृंदावन के जंगल में वास्तव में भ्रमण कर रहे थे तो उनका मन रात दिन प्रेम में निमग्न रहता था। वे मात्र अभ्यास के कारण खाते और नहाते थे। इस तरह मैंने महाप्रभु के प्रेम का वर्णन किया है जो वृंदावन के बारहों वनों में भ्रमण करते समय उन्होंने एक स्थान पर प्रकट किया। सभी स्थानों पर उन्होंने क्या अनुभव किया इसका पूरा पूरा वर्णन कर पाना असंभव होगा। वृंदावन में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम विकार की जो अनुभूति हुई उसका विशद वर्णन करने के लिए भगवान अनंत लाखों ग्रंथों की रचना करते हैं। क्योंकि भगवान अनंत स्वयं इन लीलाओं के एक अंश का भी वर्णन नहीं कर सकते, अतः मैं तो केवल दिशा निर्देश ही कर रहा हूँ। सारा संसार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की भाड़ में डूब गया। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही उस जल में तैर सकता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करता हुआ श्री चैतन्य चरिता अमृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।